अध्याय चार। उर्दू हिंदी समाज, कामकाजी मुसलमान और दलित स्त्रियां। हिंदी व्याकरण का सबसे द्रूह और रहस्यमय विधान लिंग निर्णय है। ताति, हट, वट आदि जिन शब्दों के अंत में आए उन्हें स्त्रीलिंग लिखिए। विदेशियों को हिंदी पढ़ाते हुए अक्सर इस तरह के नियम रटाए जाते हैं और साथ ही अपवादों की सूची भी थमा दी जाती है। और शब्द पर तो बाद में कभी बात हो लेगी, फिलहाल चार शब्द लेते हैं जिनके स्त्रीलिंग होना बड़ा व्यंजक है और मारक भी। ये चार शब्द हैं प्रकृति, शक्ति, करुणा, गरीबी। इन चार पांच शब्दों से पितृसत्ता स्त्री का चेहरा गढ़ती है। प्रकृति का वैभव, शक्ति बर्दाश्त करने की, निर्माण और पुनर्निर्माण की, करुणा जो न्याय पर काबिज हो जाती है, और गरीबी जो किन्हीं पितृसत्तात्मक षडयंत्रों के चलते हरदम उसके हिस्से आती है, जो शालीन होता है यानी इसकी लाठी उसकी भैंस का तर्क, जिसे कभी आश्वस्त नहीं कर पाता, जिसके मन में लगातार यह आदर्श टिमकता है कि जो हो सबका हो और बिना मार काट के। और अस्मिता आंदोलनों ने तो कहीं कहीं धैर्य खोया भी। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अश्वेत कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से देने पर उतारू भी हुए, किंतु स्त्रियों ने कभी प्रतिशोध का दर्शन नहीं साधा। थोड़ी झनर पटर की और कुल मिलाकर उनका प्रतिरोध पूर्णतः अहिंसक रहा। मारती भी तो किसे मारती, जिसे पैदा किया था, जिसे कंधे पर लेकर घूमी थी, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, हारी बीमारी में रात दिन एक करके जिसकी सेवा की थी, उस बेटे, भाई, बाप, दूल्हे और प्रेमी को, जिन्हें मारकर होता भी क्या, वे भी तो पितृसत्ता के ही मारे हुए थे, यानी उन सामाजिक पूर्वाग्रहों के जो स्त्री पुरुष के बीच भेड़ भेड़िया का रिश्ता कायम करता था। जैसे इनकी नाक पोछी थी वैसे ही अब उनके पूर्वग्रह साफ करने थे, और सफाई धैर्य का काम होता है। दृढ़तापूर्वक अपने पक्ष पर कायम रहते हुए एक विवेक सम्मत संवाद की कोशिश, परिवार के भीतर भी प्रजातंत्र की पहल इसी जनतांत्रिक तरीके से होनी होती है, जो बहुत उबाऊ, थकाऊ और उलझन भरा किंतु एकमात्र ठोस और सही रास्ता है। वह इसलिए कि इसके दूरगामी परिणाम टिकाऊ और अच्छे होते हैं। बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय के निकष पर पूर्णतः सफल। धैर्य का फल मीठा ही होता है। फल के पकने की अपनी एक ही लय होती है। इस लय का अनुसरण ही उसकी मिठास है। यहां कोई जल्दबाजी नहीं चल सकती। नूडल्स नहीं है फल की 2 मिनट्स प्लीज का तर्क वहां चल जाए। धीरे धीरे से मना, धीरे धीरे से सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, रुत आय फल होए। इसी विवेक सम्मत और अभंग धैर्य का कमाल है कि लिबरल रेडिकल स्त्रीवाद के दौर से, यानी अब 100 साल के भीतर, स्त्रियों ने अपनी स्थिति सजी धजी गुड़िया या पालतू गाय से बढ़ाकर तेजस्वी सहचरी वाली तो अवश्य कर ली है। इक्का दुक्का विशिष्ट स्त्रियों का प्रभुत्व तो पहले भी कायम हो जाता था बीच बीच में, लेकिन अब का हाल तो यह है कि जत्था की जत्था साधारण स्त्रियां उठी हैं और लाख अड़चने काट कर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे समुदाय और पर्यावरण, हर वर्ग, हर वर्ण, हर नस्ल, हर धर्म के शोषित एकक का सर्वतोमुखी विकास संभव किए दे रही हैं। यह ठीक है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, पर कुछ तो स्त्री विमर्श की गजिन उपलब्धियां रही हैं, जिससे स्त्री विमर्श का रंग रुतबा ही अलग हो गया है। अब यह रोती विसुरती दुख की मारी बेचारी नेक लड़की की बिना पत्रिका नहीं रही। हंसती, मुस्काती, आत्मविश्वास से पगी स्त्री भाषा का प्रजातांत्रिक मोर्चा है। आत्मविश्वास का सबसे सुखद पक्ष होता है विश्वास, सामने वाले की आधारभूत अच्छाई में। उसी विश्वास के सहारे कोई अहिंसक रहने का धीरज भी साध सकता है। बराबरी की बुनियादी शर्त है मजबूत औरतें और न्याय सिद्ध धीरोदात्त पुरुष। चकचुक की जीवन का सच्चा प्रमाण है। चकचुक नहीं तो जीवन कहां। पारस्परिक सम्मान का आधारभूत लक्षण है संघर्ष। संघर्ष शून्य संबंध पारस्परिक सम्मान का संबंध हो ही नहीं सकता। बराबरी के लिए लड़ने की सबसे बड़ी व्याप्ति तो यही है कि स्त्री को पुरुष की आधारभूत अच्छाई में विश्वास है। उसे विश्वास है कि आंख की पट्टी खुलेगी तो वह अच्छा दोस्त भी होगा और अच्छा पिता भी। पूर्व ग्रहों के पत्थर तोड़ती हैं वे, पत्थर पर सिर पटकने वाली मूर्खता वे नहीं करती। यही काम साहित्य भी करता है। कुल मिलाकर स्त्री विमर्श का ध्येय वही है जो साहित्य का, मन की जलवायु बदलना। जाहिर है कि पहला पेड़ लगाते ही जलवायु बदल नहीं जाती, पर पेड़ लगाया तो जलवायु पर इसका तिरछा महीना और अवश्यंभावी असर कुछ तो होगा ही। तिरछा महीन और अवश्यंभावी असर कुछ तो होना लाजमी है। पर कुल मिलाकर जैसे पर्यावरण पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, स्त्री विमर्श पर भी इसका सीधा संबंध है राष्ट्र राज्य की शक्ति के क्षय से और धार्मिक कट्टरपंथीपन से भी। इतना तो सबको ही याद होगा कि दबी कुचली अस्मिताओं का स्वाभिमान, मिशन से जुड़ाव, सेकुलर और कल्याणकारी राष्ट्र राज्य मॉडल में ही संभव हुआ। वियतनाम, पर्शिया, तुर्की, चीन और भारत में फ्रांसीसी क्रांति की तरह के मुक्ति संग्राम 1906 से 1911 तक घटित हो गए, और इसके बाद का इतिहास तो दबी कुचली अस्मिताओं की स्थिति में क्रमिक बदलाव का इतिहास ही कहा जाएगा। राष्ट्र राज्य का विकास जिस कल्याणकारी सेकुलर मॉडल पर हुआ, उससे उस धर्म की सत्ता छीनतर हुई जो खुदा की नहीं खुदा के बंदों की बनाई हुई थी, और जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का ही तंत्र चलता था। नव स्वतंत्र देशों के संविधान में बराबरी कम से कम कागज पर तो जरूर संभव हुई। स्त्रियां नागरिक समाज का हिस्सा बनी। इधर राष्ट्र राज्य की क्षीण शक्ति हुई है तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, नॉर्थ अमेरिका के फ्री ट्रेड जोन आदि उठ खड़े हुए हैं। इसके हलकों में स्त्रियों को बराबरी की तनख्वाह और पगार तो नहीं मिलती, क्रेश आदि की सुविधा पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता। केन्या जैसे देशों में एथनिक सारवाद जैसे खतरे भी पनप रहे हैं, जो मानते हैं कि राष्ट्रीय नागरिकता नस्लवादी दमन से पूर्ण मुक्ति का आश्वासन नहीं देती। पिछले 3 दशकों में धार्मिक कट्टरता बढ़ी है और स्त्रियों का उसका विकट प्रभाव भी हुआ है। धर्मकर्ता क्या है कि संस्कृति की पहरेदारी स्त्रियों के सिर ही डाल देता है, और इस बहाने डाल देता है कि उनकी नाक में नकेल। ट्यूनिशिया, मोरक्को और अल्जीरिया हो या वे मुस्लिम देश जहाँ तेल नहीं, तेल वाले मुस्लिम देशों पर उनकी बेपनाह आर्थिक निर्भरता है। पर्शियन गल्फ वाले ये देश भयानक ढंग की धार्मिक कट्टरता के शिकार हैं। इजिप्ट, यमन, बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान आदि के विस्थापित मजदूर सख्त धार्मिक कट्टरता के माहौल में काम करते हैं। उन देशों में तरह तरह के सहायता ग्रांट भी धार्मिक कट्टरता के पोथे के साथ एक पैकेज रूप में आते हैं और स्त्रियों की नाक में दम कर देते हैं। इन दिक्कतों के निवारण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन बने हैं। सार्वभौम बहनापे का दर्शन विकसित हुआ है। स्त्री विमर्श, विद्रूपण, विलोपन, विस्थापन की 3 विकृतियों से जूझती हुई स्त्री संघ शक्ति के क्रमिक विकास का मंजर सामने लाता है। पर सार्वभौम बहनापे की बात करता हुआ भी यह अंधे सार्वभौम का हिमायती नहीं, जैसा कि विश्वायन देशों, वर्गों, वर्णों, नस्लों की अलग अलग सांस्कृतिक इतिहास, अलग अलग नैतिक भूगोल और इसके हिसाब से उसका चरित्र भी विविध वर्णी है। सुरक्षा, स्वायत्तता, घरेलू, सार्वजनिक, सामुदायिक और बाजार के सारे संसाधनों का निर्बाध उपयोग, शिक्षा, रोजगार और जीवन साथी का चुनाव, शादी करने न करने, बच्चा जनने न जनने के निर्णय की स्वाधीनता, घरेलू कामों की सहभागिता, ये मांगे साझा हैं, पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों और आर्थिक, जातीय, सांस्कृतिक निकायों में अलग अलग मुद्दे रेखांकित हो रहे हैं। अब चीन की ही बात बताऊं तो वहां कामकाजी महिलाओं का रविवार और भी ज्यादा भारी होता है। हफ्ते भर का घरेलू काम, ऊपर से दिन भर बाल की खाल निकालते पति की डांट डपट। यू दाई चून और ली जिन ने यह पूरी दुर्दशा 3 पदों में पकड़ने की कोशिश की है। अपराइट सैटरडेज, फाइटिंग संडेज, एक्साइटेड मंडेज। आगे हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरह का व्यवहार स्त्रियों के साथ होता है उसमें संडे तो शायद ही किसी का फंडे होता हो, ज्यादातर का वह गंडे हो जाता है। जान पड़ता है कि लगातार सिर पर कोई बंदूक ताने खड़ा है। हुआ दरअसल यह कि मर्दानगी पर एक विशेष संकट आन पड़ा है। मोर्चों पर पुरानी तरह के युद्ध तो होते नहीं, सारा पौरुष वे ओसी लड़ाइयों में निकाल देते हैं। दिन भर चीखने चिल्लाने वाले पिता से बच्चे भी कन्ने काटते हैं। इससे उनका व्यर्थता बोध और उनकी खूंखारिता भी बढ़ जाती है। बल्कि आधिक्य के दावों के बावजूद काम धाम उनसे कुछ होते नहीं, बैठे ठाले करे भी क्या तो रोब ही गालिब कर देते हैं। बात मजाक में उड़ाने की नहीं है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका, घाना और नाइजीरिया में व्यापक राज्य हिंसा लोगों ने झेली है। शुरू शुरू में तो इसका व्यापक विरोध स्त्री संगठनों ने किया, फिर मिलिट्री शासन के दौरान उनकी क्या उनके मर्दों की भी राजनीतिक भागीदारी लुप्त प्राय हो गई। राजनीतिक पार्टियों और श्रम संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए। मर्दों का सार्वजनिक संसार लुप्त हो गया। दिन भर घर में रहने को वे विवश क्या हुए और तो बच्चों का जीना भी दुभर कर दिया। पोलैंड की कैथोलिक सरकार गर्भपात का हक मांगने वाली स्त्रियों को टू राइट एंड टू लेफ्ट कहकर लताड़ती है। मार्क्सवादी सरकार ने इतना तो समझा था कि सेक्स ज्यादातर औरतों के लिए एकदम से थका देने वाली वीरस नोच खसोट ही होता है, एक तरह का बलात्कार। बिना मन के बच्चे पैदा भी कर लो तो पालेगा कौन, इसलिए गर्भपात की सुविधा मिलनी ही चाहिए। इसलिए उनको टू लेफ्ट कहा। और चूंकि वे स्वतंत्र पूंजी निवेश चाहती हैं, वैंगार्ड ऑफ अ सेल्फ रिट्रोस्पेक्टिव कैपिटलिज्म कहकर उन्हें डांटा। सूडान जैसी जगहों में बाढ़, सुखाड़ और गृह युद्ध औरतों बच्चों को राहत शिविरों का मोहताज रखते हैं। कुछ वर्ष पहले बेबी फूड की जगह जहां साबुन पाउडर बट गया, जिससे सैकड़ों बेमौत मर गए। 1970 के अंत तक यूनाइटेड नेशंस के 15 देशों में सिर्फ 6 महिला प्रतिनिधि थीं। 100 से अधिक देशों में सब महत्वपूर्ण पदों पर मर्द ही काबिज थे। दुनिया भर में सिर्फ 10% राजनीतिक पदों पर स्त्रियां हैं और यह प्रतिशत दिनों दिन घट ही रहा है, क्योंकि सोवियत संघ रहा नहीं जहां 20 से 30% सीटें स्त्रियों के लिए तय थी। राजनीति शास्त्र में जिसे चाप्स मेंटेलिटी कहते हैं, उसी का शिकार है ज़्यादातर मर्द। कंजूसी से जैसे राजा सामंतों को थोड़े अधिकार देता है, उससे भी ज़्यादा कंजूसी से सामंत व्यापारियों को देते हैं। फलने फूलने के लिए कुछ हथियार और व्यापारी सामान्य जनता को और कुछ नहीं देना चाहता। जबकि सोवियत संघ के विघटन के बाद स्त्रियों ने जो नारा दिया था, अपने आप में बिल्कुल सार्थक है। औरतों की शिरकत के बिना प्रजातंत्र प्रजातंत्र है ही नहीं, सबाल्टर्न काउंटर पब्लिक है। पैदा करना है न स्त्री को अपना गुइया पचखियां फेंकता स्थापन। हिंदी समाज एक खुलता खिलता समाज है। खिलेगा तो देखेंगे और नहीं भी खिलेगा तो देख लेंगे वाली बलंगता जहां फिजा में ही है। आग लगी हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार वाली बेखुदी भी। यह एक ऐसा समाज है जहां सबको सबसे मतलब है। सब घर की खिड़कियां एक दूसरे के आंगन में खुलती हैं, सबकी फटी में सब टांग अड़ा देते हैं। दूल्हे दुल्हन की मिलनी आमनी में कोबर का ढूका अगरधत्त लोक जीवन का केंद्रीय सत्य है। वहां कूप ही में जहां भंग परियो है, हर नुक्कड़ पर पान की दुकान, हर पान की दुकान में गजगजाता हुआ एक आदम का शीशा, राम झरोखे बैठकर जग का मुजरा लेने में तो फिर भी एक सांस्कृतिक प्रबंधन है। यहाँ तो राम रहीम सबके चबूतरे पर उचकते चमकते धक्का मुक्की मचाते एक टिकट में दो खेल बाय वन गेट वन फ्री का भेड़िया धसान मचलता है। चंडू खाने की गप और नुक्कड़ की सीटियां, मध्यम दर्जे की गुंडई और गाली गलौच, आले दर्जे का आलस्य और परमुंडे फलाहार कौशल, अधम दर्जे की लंपटता, हिंदी समाज खुलते खुलते हिंदी समाज का यह केंद्रीय चरित्र स्त्री विमर्श में ऐसा उभरा है कि लगता है कोई पुरुष बचा ही नहीं यहाँ जिसे नई औरत प्यार कर सके, गुइया बना सके, जिसको उसका साथ उसे छाया और तृप्ति दे सके। मैत्रेयी जी के चाक के मास्टर साहब की आदर्शवादिता कुछ हद तक छूती है, पर उनमें भी वो तबोताप कहाँ। जो अच्छे हैं वे मजबूत नहीं, और जो मजबूत हैं उनमें आधारभूत शालीनता ही गायब है। उनसे प्रेम कर पाना आसान नहीं। प्यार को केंद्रीय बिंदु बनाकर यदि एक वृत्त खींचे तो उसका 3/4 क्या होगा, पारस्परिक सम्मान ही तो। बाकी 1/4 में ही दैहिक आकर्षण, सुख दुख दायित्व आदि बांटने की वृत्ति आदि आएगी। बात बात में गाली गलौज, हल्ला गुल्ला और मारपीट करने पर उतारू, हुलुक बंदरों में धीरोदात धीर लड़ी धीर प्रशांत की धीरोधत कौन सा नायक ढूंढ पाएंगे आप। उनकी मनोसामाजिक कुंठाओं कमजोरियों का पुरुष कलाबाजारियों का ध्यान करते हुए उनसे स्नेह सहानुभूति तो रखी जा सकती है, पर प्रेम, काश उसका कोई स्विच होता जो पात्र के लिए आन हो पाता। पावन कर्तव्य भाव से आन करके छुट्टी पा जाती नहीं औरत। कोई तो होता लहना सिंह, नमक का दरोगा, अलगू चौधरी या जुम्मन मियाँ ही जिसकी कोई आत्मा होती, कोई शेखर, कोई ज्यादा कामरेड ही होता। बहुत सारी शिकायतें हिंदी समाज को स्त्री विमर्श से हैं कि वह अलगाववादी, घड़फोड़ू, मनचली और हल्की तबीयत की अर्धशिक्षित औरतों का कच्चा रोना गाना है। पश्चिम के अधकचरे प्रभाव में भाग गई हैं औरतें। अक्सर औरतों के देह उनके पाठ पर चस्पा कर दी जाती है। उन्हें हर चंडुखाने में ऐसे दत्तचित्त भाव से पुंश्चली सिद्ध किया जाता है जैसे 9वीं 10वीं में हम हालैंड स्टीवेंस और थियरम डिडिक्शन आदि सिद्ध किया करते थे। इस देश में पुरुषों का आधा समय तो इस यत्न में जा ही रहा है कि जो औरतें काबू नहीं आती उन्हें जलील करो। यह सब क्या हो रहा है तेरे नादा, तुझे हुआ क्या है? यह प्रश्न है। उत्तर में दिल कुछ कहता है जो सुनाई नहीं देता, और बात आगे बढ़ाता हुआ पूछने वाला एक प्रश्न और पूछ जाता है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? पूछने वाले और दिल के बीच जो यह अभंग सा संवाद चलता है, और बीच में दिल की कही बात जो सुनाई नहीं देती, वही डूबी पड़ी औरतों की आवाज़ थी जो खोसी गई थी नायिका के नथ के मोती की तरह, यही ठैया मोतिया हेराए गेले रामा। स्त्री आंदोलन के पहले भी स्त्री लेखन तो था ही, वह विमर्श या एजेंडा लेखन नहीं था, पर उसकी अपनी आभा थी। यह आभा अस्फुट सी थी। भक्त कवित्रियों, थेरियों और 19वीं सदी तक की दूसरी महिला रचनाकारों में वैयक्तिक मुक्ति की छटपटाहट तो थी, पर नमक तेल रोटी खेत खलिहान और चकला घरों में फंसी पड़ी साधारण स्त्रियों के प्रति सखी भाव विस्तार, वह भी वैश्विक स्तर का, वर्ग वर्ण धर्म नस्ल आदि संकीर्ण घेरे लांगता फलांगता। सखी भाव विस्तार ऐसा नहीं था कि दुनिया की हर संतप्त स्त्री, स्त्री क्यों, हर संतप्त पुरुष, साधनहीन वृद्ध विकलांग दलित अश्वेत अशक्त पुरुष तक की मुक्ति में सहायक बनने का संकल्प साधे। सांप्रदायिकता, शिक्षा, पर्यावरण, वैश्वीकरण आदि बृहत्तर विषयों पर भी एक अलग विश्व दृष्टि, वैकल्पिक दृष्टि हो जिसकी। आज महिलाओं का एक बड़ा भाग विस्थापितों का है। घर की न घाट की स्थिति में ज्यादातर महिलाएं हैं, पर घर की न घाट की होने की स्थिति अच्छी ही होती है। थोड़ा थोड़ा जायजा दोनों का मिलता रहता है और अतिरिक्त मोह भी छूटता जाता है दोनों से, अतिरिक्त मोह जो पहले की औरतों की कमजोरी था। औरतों का जब हिस्सा लेखिकाएं कहलाता है, वह भी बीमारू हिंदी क्षेत्र में, उनके झमेले का तो कोई और छोर ही नहीं। वे बस तो गई हैं शहरों में, मगर ज्यादातर की जड़ें अभी गांवों, पहाड़ों या कस्बों में हैं। इसलिए बाहरी और भीतरी नैहर और ससुराल के द्वैत के अलावा उनके अंतर जगत को शहरी और ग्रामीण जीवन मूल्यों का द्वैत भी परेशान रखता है, और इसी द्वैत से उनके लेखन को वह नाभिकीय ऊर्जा मिलती है। सत्य को समग्रता में समझने की कोशिश एक खास तरह की आंतरिकता, परत दर परत खुलती खिलती जाति स्मृति से महमा अनुगूजे और एक आवेगमयी ठस्सेदार भाषा। सुई धागा सेंसर की कैंची और मुंह सिलने को सुई धागा हिंदी प्रदेश की हर औरत के जीवन के ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है। दुख हो या सुख, बेटी मुंह सी कर रहना, दोनों कुलों की लाज निभाना, दूधो नहाना, पूतो फलना, बाकी भगवान सब ठीक करेगा। संक्रमणशील हिंदी प्रदेश में यह एक आम मध्यवर्गीय परामर्श है जो कभी न कभी हर औरत आत्मसात करती ही है। अच्छी लड़की कहलाने का मर्ज किसको नहीं सताता। धैर्य और सहिष्णुता, मर्यादा और क्षमाशीलता हमारे नैतिक जीवन के ऐसे लड्डू हैं कि जो खाए वह भी पछताए, जो न खाए वह भी पछताए। एक खास तरह की आध्यात्मिक डाइटिंग साधो तो ये लड्डू और त्रास देते हैं। जो खाए वह लड्डू गोपाल बन जाए या गोबर गणेश, जो न खाए भूख और लालच उस पर एक खास तरह की लीन एंड हंग्री चिड़चिड़ाहट बरपा कर दे, जिससे एक पीढ़ी पहले की उग्र स्त्रीवादियों को एकाकार किया जाता था। यह द्वैत भी हिंदी जगत की स्त्री विमर्श का बड़ा द्वैत है कि प्रियजनों का दिल दुखाए बिना हम नई राह कैसे कोड़े निकालें, कैसे बिठाएं अपने पिता भाई पति पुत्रादि के मन में कि स्त्री विमर्श पुरुषों के खिलाफ नहीं, उस पितृसत्तात्मकता के खिलाफ है जो पुरुषों को भेड़िया और स्त्रियों को भेड़ की स्थिति में स्थापित करता हुआ मानवीय गरिमा से दोनों को ही गिराता है। इसलिए दुश्मन तो दोनों का ही है। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता जटिल संबंधों के पेच कुछ हद तक सुलझाता है, पर 72 प्रश्न उलझे ही रह जाते हैं। टोकन विमेन तो आत्मकथाएं लिख भी सकी, उन्होंने तो कुछ कर भी लिया, पर उन लाखों करोड़ों अशिक्षित अर्धशिक्षित असुरियम पश्याओं वेश्याओं मजदूरनों किसानों का इतिहास लिखा जाना शेष है, जिनकी पीड़ा बस लोकगीतों में टिमटिमा कर रह गई। सब्जियों की काट कूट, बर्तनों की झनर पटर, चीजों की झाड़ फूड पर जिनका गुस्सा उतर कर रह गया। नवधनाढ्य वर्ग और सामंती परिवार की स्त्रियों के दुख अलग तरह के हैं, उन्हें अहर्निश मुस्कुराया करने वाली गुड़िया से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं जाता। यथार्थ से आंखें मूंद लेना और मस्ती का नाटक करना एक ऐसी बड़ी बेईमानी है जिससे ये औरतें आने वाली कई पीढ़ियों को पंगु बना देती हैं। पीड़ा है तो कम से कम पीड़ा को पहचानिए। पीड़ा पक्षाघात है, पर शक्ति का उच्च भी पीड़ा ही है। कैसेंड्रा में फ्लोरेंस नाइटेंगल जो कहती है, विडम्बनाओं या प्रताड़नाओं से गुजरती हुई हर स्त्री उसे याद रखे तो अच्छा हो। इनवर्टेड कॉमा, सफर वी मस्ट, आउट ऑफ नथिंग्स कम्स नथिंग बट, आउट ऑफ सफरिंग से मे कम द क्योर, बेटर हैव पेन देन पैरालिसिस। कोष्टक में, झेलने के तैयार रहो, शून्य से शून्य ही जन्मता है, लेकिन संघर्ष के गर्भ में निदान पलता है। अंग सुन्न हो जाए, इससे तो बेहतर है कि वे पिराए। कोष्टक, हमारा हिंदी समाज एक संक्रमणशील समाज है, जहाँ कई स्थानिकताएं और कई कालखंड हम एक साथ जीते हैं। इन सबके बीच एक सर्वसाधारण स्त्री अपने क्लिष्ट मनोसामाजिक यथार्थ से कैसे रूबरू होती है, इसके उदाहरण साहित्य में भरे पड़े हैं, कुछ अच्छी फिल्मों में भी। वैधव्य, एक खाली महान रियासत। मेरी एक वरीय सहकर्मिणी के पति लंबी बीमारी के बाद अभी कुछ मास पहले ही गुजरे। दोनों के संबंध इतने अच्छे और आपसदारी इतनी गहरी थी कि उनकी देखभाल के लिए उन्हें अच्छी अच्छी नौकरियां भी खास निष्प्रिय भाव में छोड़ी। मन में कहीं यह विश्वास था कि सेवा से उन्हें ठीक कर लेंगी। जब डॉक्टरों ने जवाब दे ही दिया और उन्हें लगा कुछ दिनों में बिछड़ जाना ही है, पति ने आगे के जीवन के लिए साड़ियाँ और बिंदियाँ अपने PF के बाकी पैसों का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर खरीदी। जीवन के बाकी दिनों के लिए बड़े छोटे बड़े निर्देश, पेंशन के कागज़, LIC की रसीदें, बैंक के छोटे मोटे बचत अकाउंटों की अपडेटेड पासबुक एक ब्रीफकेस में डालकर उन्हें दी और जीवन के अंतिम दिन तक अखबार में विवाह विज्ञापन देख देख कर उनके योग्य वरों से चिट्ठी पत्री करते चले गए। उनकी मृत्यु के बाद कई लोग आए उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर। पति का ठीक कराया विवाह, वश चलता तो जीवन काल में पत्नी की दूसरी शादी करा देते। तो कहें कैसे कहें कि स्त्रीवाद ने बदला नहीं पुरुषों का नजरिया। अपवाद के रूप में तो करुणामय सुसंस्कृत उदार पुरुष हरयुग में आए हैं हुए हैं, पर सुधारवादी आवेगों से ऊपर उठकर बराबरी का स्पेस और अवसर दे पाना एक कठिन काम था, जो स्त्रीवादी मन मजाई के बाद ही पुरुषों से सद पाया। वह भी कुछ पुरुषों से पितृसत्तात्मक कुंठाएँ या अधिकार लिप्सा जिनमें कम थी। वैसे स्पेस और अवसर के बारे में मेरी धारणा है कि अमूमन वे मिलते नहीं हैं, ले लिए जाते हैं। अगर ट्रेन में कोई फैल कर बैठा है और आप कोने में अटके हैं, तो 10 में से 9 बार यही होगा कि आप सिमटे हुए ही अपना सफर पूरा कर लेंगे। वह खुद नहीं कहेगा कि आ बराबरी का स्पेस ले, तेरा हक है, टिकट तेरा सिंगल, मगर तू डबल वाला केस सिर्फ शारीरिक स्थूलता का द्योतक नहीं। यह एक तरह का मानसिक मोटापा है जो हम में यह सहज आलस्य जगाता है कि जहाँ बैठे हैं बैठे रहो, जितनी जगह घेरे हैं घेरे रहे। ऐसी बॉडी में दिल भी बड़ा चाहिए। और मजाकिया दर्शन मुझे तो एक पते की बात लगता है, जो मानसिक आध्यात्मिक मोटापे से ग्रस्त मोटूमलों को यकीनन याद रखनी चाहिए, जो भी लिंग वर्ग वर्ण के धरातल पर प्रिविलेज्ड है, उन सबको मैं दूसरे का हक खाकर दूसरों का स्पेस घेर कर बैठने वाला मोटूमल मानती हूँ, आध्यात्मिक मोटापे का शिकार मानती हूँ इन्हें। इनसे तो कहना ही पड़ता है, खिसक जरा प्यारे, सरक जरा प्यारे, ऐसी बॉडी में दिल भी बड़ा चाहिए। अस्मिता आंदोलन यही कह रहे हैं और क्या, और कुछ तो इनका असर हुआ ही है। फिर भी वैधव्य एक बड़ी दुर्घटना है। आज भी विधवाओं को देखकर कलेजा मुँह को आ जाता है। ऐसा लगता है मानो एक खाली महान रियासत खड़ी हो सामने, सांस है हवा बह रही हो, चारों तरफ सुखाड़ से भरी हो ईश्वर की आवाज। नीचे की ओर झुके हों पेड़, दयावान पेड़, अकेलेपन के पेड़ जिनके काले कोटरों में रहती हुई एक अनुज की छाया खींचती हुई उस दीवार पर एक अजब चित्र जिसके पीछे है गुप्त सी सुरंग, गुमसाइन हवा, बासी स्मृतियां, लौ सीढ़ियां चक्करदार जो खुलती हैं सूनी छत की तरफ। बैठा हुआ दीखता एक विषैला मकड़ा प्रेमहीन तीलियों के ऊपर जुगाते बाणों की तरह उड़ गए स्वर्ग की ओर। क्या पलट कर देखते होंगे यह दें, अखबार का एक पन्ना आग पर धरा, कमजोर धुआं और मृत्यु है वह साड़ी जो वह लपेटी रखती है अपने चारों तरफ। सितारों के ऊपर के कड़े शून्य में फाँकते से फड़फड़ाती होगी आत्माएं, इस सोच में लेकर दाने तलहथियों पर देह अकेली एक पांव पर खड़ी है। सिल्विया प्लाथ। दैनिक मानसिक संतापों के ऊपर आर्थिक भूकंप और सामाजिक आध्यात्मिक गोलाबारियां व्यावहारिक संकट अलग पैदा करते हैं। अब यह तो शायद नहीं होगा कि विधवाएं मनहूस समझी जाए या वैधव्य पिछले जन्मों के कुकृत्यों का फल माना जाए, या विधवा विवाह करते हुए कोई इस बात से डरे कि परमाणविक हथियार इसकी जन्म कुंडली में दर्ज है। शादी करूंगा तो हो सकता है मेरे भी प्राण संकट में पड़ जाएं। बिना बाल बच्चों की कमसिन विधवाओं का विवाह लोग कट्टर मध्य वर्ग में भी अब करने ही लगे हैं। दिवंगत पति की संतति पर पत्नी के अधिकार की बात कम से कम कागज पर तो दर्ज है, पर कई ऐसे मनोवैज्ञानिक संकट है जिनसे निपटना अविशेष है। पति के असामयिक निधन के बाद मानवीय आधार पर पत्नियों को उनकी शिक्षा दीक्षा के अनुसार पति के दफ्तर में कोई न कोई जगह तो दी जाती है, पर उनके साथ जो सलूक होता है, खासकर यदि वे आकर्षक हों, चार्टर्ड बसों में चलते हुए किसी भुक्तभोगी से पूछकर जान सकते हैं। एक खासी खूबसूरत उदास लड़की से अभी हाल फिलहाल किसी चार्टर्ड बस में ही मेरी दोस्ती हुई। उसका एक पांव जरा सा खराब था। बस में चढ़ते हुए उसे हल्के सहारे की जरूरत होती थी। कई दिन देखा कि पिलपिले व्यक्तित्व वाला एक छिपकली नुमा आदमी उसे करीब करीब रोज अपने गोद में उठाकर एक स्टॉप पर चढ़ा देता है और अलग होते हुए हल्की चिकुटी भी काट लेता है कहीं ना कहीं। उसके बाद सारे रास्ते वह लड़की सामने वाली सीट के पट्टे पर मुंह गाड़े एक उदास नींद सोने का ढोंग किए रहती है। ऐसा लगता है उसे देख करके रोने की ऊर्जा भी उसमें नहीं बची, सिर्फ थकान बची है। जो होना है हो जाए, जो घटना है घट जाए वाले निस्वेह से काली थकान। काफी हिम्मत जुटाकर मैंने उससे बातचीत शुरू की और बातों में जाना कि अपने बॉस की पिलपिली हरकतों का मुखर प्रतिरोध वह सिर्फ इसलिए नहीं कर पाती कि उसके इस पर काफी एहसान है। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उसने न सिर्फ उसको नौकरी दी बल्कि उसकी बच्ची का दाखिला भी एक बड़े स्कूल में कराया। डे बोर्डिंग है जहाँ, डे बोर्डिंग नहीं होता तो पीछे बच्ची को स्कूल बस से उतारता कौन? रोज तो स्कूल बसों इतने हादसे होते हैं। कहने लगी, अब इस देह का उपयोग भी क्या है, किसी भट्टी में झोंक दो। जितनी देर बॉस इधर उधर हाथ लगाते हैं, सांस रोक लेती हूँ, सोचती हूँ कर्ज उतार रही हूँ।